ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज के सायंकालीन सभा में आप सबका स्वागत है। और आज की संध्या की जो आपकी टूर है वो वृंदावन के उत्तर दिशा में है, और वो स्थान है रंगनाथ जी मंदिर, गोविंद देव मंदिर और ब्रह्मकुंड और ज्ञान गुदड़ी, यानी उद्धव गोपी मिलन स्थली और राधा ब्रज मोहन मंदिर। ये सब कुछ होगा तो अच्छा है आपके शेड्यूल में। तो सुबह हमने गोविंद जी की आधी कथा कर दी है कि कैसे गोविंद जी प्रकट हुए, और गोविंद जी जब प्रकट हुए तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने उनकी सेवा की बहुत समय तक। उसके बाद में 100 साल तक ब्रज में बहुत ही आनंद रहा, सभी विग्रह एक के बाद एक प्रकट होते गए और सब गोस्वामी जी उनके अनुयायी मिलकर बहुत ही बढ़िया आध्यात्मिक उत्कर्ष के साथ ये सेवाएं होती रही। लेकिन मैं आप सब लोगों को एक बताना चाहता हूँ बात, कि उसके बाद में वृंदावन में औरंगजेब का आक्रमण शुरू हुआ, उसका आतंक शुरू हुआ, और वो एक विचार करने जाए इस वस्तु है कि हमारा इतना हिंदू लोगों का बाहुल्य, यानी मेजॉरिटी था इंडिया में, भारतवर्ष में सब जगह मंदिर ही मंदिर है हमारे धर्म के, फिर भी यवनों ने आकर आक्रमण किया और हमारी मूर्तियों का ध्वंस किया। इनका कारण यह है कि हम सब लोग इतने बड़ी संख्या में होने पर भी एक नहीं हैं, हम लोग सब विभाजित हैं। कोई बोलता है मैं शैव हूँ, मैं बोला वैष्णव हूँ, कोई कहता है मैं बुद्ध हूँ, कोई बोलता है मैं ये हूँ पुष्टि मार्गी हूँ, ये संप्रदाय हूँ वो संप्रदाय हूँ, हमारे आपसे बनते नहीं है, आपका तिलक डिफरेंट है हमारा तिलक डिफरेंट है। तो ये विभाजनवादी भाव जो है, इसी से हम बड़ी संख्या में होने पर भी कमज़ोर रहे हमेशा, और आज भी वही स्थिति है, आज भी वही स्थिति है। हमारे तीर्थों के महान महान तीर्थों के बीच में ये लोग आ गए हैं, सुबह उठ के सबको डिस्टर्ब कर देते हैं। पंडरपुर जाइए आप, श्रीरंगम जाइए, वृंदावन के बरसाने में जाइए, मथुरा तो भाई कुछ वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन गांव-गांव में जहाँ पर अभी पंडरपुर में भी देखेंगे तो मोहल्ले के मोहल्ले हैं। इसका कारण हम लोग एक नहीं हैं, आपको लगेगा मैं ये सभा में बैठ के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना हम लोग केवल ऐसे कथाएँ सुनते बैठेंगे अपना ही जप करेंगे तो हमारे ऊपर भी आक्रमण होगा। जब तक हम लोग अपने धर्म की नींव को नहीं समझते हैं, धर्म की सर्वोच्च चीज़ें हैं लीला प्रेम भक्ति, और वो करने के लिए वो तो सातवीं मंजिल है, और सातवीं मंजिल अगर खड़ी होनी है तो नीचे बेसमेंट भी होना चाहिए ना। सातवीं मंजिल क्या करेगा, हवा में तैरेगी क्या? सातवीं मंजिल अगर आपको हासिल करनी है तो आपको पहले फाउंडेशन चाहिए, फिर ग्राउंड फ्लोर चाहिए, फिर फर्स्ट फ्लोर चाहिए, फिर सारी मंजिल चाहिए, फिर आप सातवें फ्लोर पर चढ़ सकते हो। केवल सातवें फ्लोर की तमन्ना करते रहेंगे तो हम टूटते रहेंगे हमेशा, और फिर भी हमारी नींव वैसे बहुत फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, हमारे आचार्यों ने हमारे पूर्वजों ने हमारा इतिहास पौराणिक द्वापर युग का इतिहास इतना मजबूत है। तो क्षत्रिय थे फिर भी वो ऐसे सामने नहीं आए, बचा नहीं पाए, आपको भगवान लीला करते हैं, भगवान तो भाग नहीं रहे डर से दर्द की, भगवान लीला कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन करंट लोग सिचुएशन को देखते हुए हमको विचार करना चाहिए कि जब तक हम अपने धर्म पर स्वयं गर्व नहीं करते हैं, और अपने बच्चों को अपने धर्म पर गर्व करना नहीं सिखाते हैं, तो हमारा आपका धर्म का नाश हो गया ये समझ लो आप। और एक धर्म का नाश कैसे होता है, पति पत्नी दो और बालक एक, तो कितना हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन, 50%। दो हो गया तो 100% नहीं होता है। अगर धर्म को बचाना है तो एवरेज 2.5 बच्चे होने चाहिए, मतलब दो फैमिली में 5 बच्चे होने चाहिए हमारे धर्म में, तब हमारा धर्म बच सकता है। लेकिन सब लोग एक ही पर संतुष्ट रहते हैं, एक ही के पीछे भागते रहते हैं, तो दो के हम एक बनाते हैं, फिर वापस दो के एक बनाते हैं, मतलब आगे चेन रिएक्शन चलते रहता है। आज की तारीख में धर्म की रक्षा करने के लिए व्यक्ति चाहिए, नंबर चाहिए, वी हैव टू हैव नंबर्स, बिकॉज हमारा नंबर्स जो है बहुत तेजी से नीचे उतर रहे हैं, बहुत तेजी से। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो 1% था, आज परसेंटेज डिफरेंट है। पर आप, हम लोग सोते रहेंगे आराम से, 2050 साल में ऑलरेडी प्रेडिक्शन करके रखा है क्या होने वाला है। हम लोग माला लेके भागेंगे जंगल में, कोई जब करने देगा नहीं हमको, और ये भी गारंटी नहीं कि हम 2050 के पहले ही गुजर जाएंगे, ऐसा भी गारंटी नहीं है। तो जीना है, और जीना है तो डर डर के जीना नहीं है, जीना है तो गर्व से जीना है, शान से जीना है, बलपूर्वक जीना है, हक से भक्ति करनी है, भगवान को पुकारना है। तो हमारा जब इतिहास पढ़ते हैं ना, बहुत खून खौलता है कि पीढ़ियों से और सैकड़ों, मतलब सदियों से, हजारों सालों से चल रहा है ये। हम सोए हुए हैं, लोग हमारे ऊपर थोड़े संख्या में एकत्र होकर आक्रमण करते हैं, एंड वी गेट डिस्ट्रॉयड, और भागते हैं हमारी मूर्तियों को लेकर। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्षत्रिय निर्माण करने का भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल इतना ही कह रहा हूँ कि कब हमारे हृदय में ओपनली हमारे धर्म के प्रति गर्व होगा, वेन वी विल से वी आर प्राउड ऑफ आवर सनातन धर्म, हम गर्व करते हैं हमारे वैष्णव संप्रदाय पर, कब करेंगे हम? ऑफिस जाते हैं तो तिलक लगा के नहीं जाते हैं, औरतें कुमकुम नहीं लगाते हैं, सिंदूर नहीं लगाती हैं, साड़ी नहीं पहनती है, जीन पैंट पहनती है, मतलब हमारे धर्म के जो चिन्ह हैं, केवल औरतें नहीं, आदमी भी, सब हमारे धर्म के चिन्हों को छोड़ रहे हैं और सब विदेशी चिन्हों को अपना रहे हैं। अधिकतर हमारे आजकल के जवान लड़के को दाढ़ी रखते हैं, समझते ही नहीं कि हिंदू है कि यवन है, क्यों? लेकिन वाई, क्यों हम अपने धर्म के चिन्हों को गर्व से नहीं निभाते अपने शरीर पर? वाई वी आर शाय, क्यों हम शिखा नहीं रखते हैं? कौन रोकेगा आपको? हंसेगा तो क्या फर्क पड़ता है? समझो आपका, आपका बच्ची पर लोग हंसते हैं तो आप बच्चे को त्याग कर दोगे? वी डोंट केयर, मेरी बच्ची है, आई लव हर। उसी तरह तिलक पर क्यों नहीं प्रेम करते हैं, साड़ी पर क्यों नहीं प्रेम करते हैं, धोती कुर्ता पर क्यों नहीं प्रेम करते हैं, शिखा पर क्यों नहीं प्रेम करते हैं, गर्व क्यों नहीं करते? तो ये गर्व घर पे होगा, कुटुंब में होगा, तो आगे जाकर हमारा धर्म बचेगा, हमारा संप्रदाय बचेगा। खाली हम सोचते हैं कि उनको करना चाहिए, और वे कौन है, हम कभी करेंगे? वो प्रधानमंत्री को करना चाहिए, वो क्या कर रहा है यहाँ पर? वो टोल टैक्स पे, टोल लाके पे भ्रष्टाचार हो रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं? अरे मोदी जी हर टोल टैक्स पे आएंगे क्या? हमारा क्या ड्यूटी है फिर, हम क्या करेंगे, बैठे के सोएंगे और कमेंट करते रहेंगे? तो ये बातें इसलिए निकली है कि 100 साल तक बहुत बढ़िया से आध्यात्मिक कार्य हुआ ब्रज में, तो औरंगजेब का वहां पर उदय हुआ, और औरंगजेब अपने आगरा के महल में खड़ा है रात को समय पे, टेरेस पे, उसको दूर एक मशाल दिखाई पड़ रही है आकाश में। तो अपने वो पूछता है असिस्टेंट लोगों को, क्या है ये? तो कहते हिंदुओं का मंदिर है, 7वें मंजिल पर ये मशाल जल रही है, क्योंकि वो मंदिर था गोविंद जी का, वो 7वें मंजिल का बना हुआ था लाल पत्थर में, इतना गौरवशाली मंदिर है। आज भी वो 2 मंजिल पे जो खड़ा है ना, वो भी बनाना मुश्किल है, जो आज भी खड़ा है उसके 5 मंजिल टूट चुके हैं, उसका फोटो भी नहीं है, हाउ ग्लोरियस इट मस्ट बी। तो उसको वो सहन नहीं हुआ, वो कहते हमारे महल के ऊपर हिंदुओं का महल की मशाल फैल रही है, डिस्ट्रॉय करो, आक्रमण करो। तो फिर शुरू हुआ वृंदावन धाम में आक्रमण, फिर गोविंद देव पर आक्रमण किया गया और वो खुलेआम अकबर को गाली देते थे कि अकबर ने अपने मनी सैंक्शन किया और हिंदुओं का मंदिर बांधा। और फिर ऐसा आक्रमण किया कि 5 मंजिल तोड़ दी उसकी, बहुत मुश्किल से वो भी, और हमारे लोगों को गोविंद जी को लेकर भागना पड़ा, गोविंद जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, सबको लेकर भागना पड़ा। ऐसे नहीं कि भाई सब लोग क्षत्रिय लोग वहां से यहाँ से भाग के आए और युद्ध किया, उन्होंने ऐसा भी नहीं, यहाँ पर आक्रमण हो रहा है और बेचारे ब्राह्मण लोग भगवान को लेकर भाग रहे हैं, कोई नदी में डाल रहे हैं, कोई कुएं में डाल रहे हैं, कोई बैलगाड़ी में रात को लेकर पलायन कर रहे हैं, यहाँ से वहां भाग रहे हैं। तो इस तरह से जब ये खबर आई कि यवन आ रहे हैं तो सभी वैष्णवों ने अपने में ठाकुर जी को बैलगाड़ी लेके शिफ्ट कर दिया। बीच रात में हमने वो ड्रामा भी किया था, बीच रात में गोविंद जी को बैलगाड़ी में रख के पलायन किया गया, कुछ समय राधा गोविंद को राधा कुंड के किनारे रखा गया, उसके बाद वो चले गए जयपुर, उसके बाद चले गए काम्यवन में। राधा गोविंद जी राधा कुंड में कुछ समय रहे और फिर वहाँ से काम्यवन गए, और जब राधा गोविंद जी प्रकट हुए तो कुछ समय बाद वृंदा देवी प्रकट हुई ब्रह्म कुंड पे, उसकी कहानी बताऊंगा आपको मैं। तो वृंदा देवी राधा गोविंद जी की क्या कहते हैं सहेली है, पार्षद है। तो रूप गोस्वामी ने वृंदा देवी का विग्रह जो है वो राधा गोविंद के दाहिनी साइड में प्रस्थापित किया, ओरिजिनल वृंदा देवी जो वज्रनाम ने बनाई थी मूर्ति उसकी, वो वज्र ब्रह्मकुंड में मिली उनको। तो वो सब राधाकुंड गए, वहाँ से काम में बन गए, और वहाँ से जब ही जयपुर जाने का निर्णय हुआ तो उस समय वृंदा देवी ने गोविंद जी से कहा कि आप तो जगत के नाथ हो, आपका सब जगह सम्मान होगा, मैं तो केवल वृंदा देवी वृंदावन की देवी हूँ, तो मैं यहीं रहूँगी, आप चले जाइए। तो ओरिजिनल वृंदा देवी अपने घर काम्यवन में अभी भी विराजमान है, और गोविंद जी फिर वहाँ से जयपुर चले गए, और जयपुर यानी जयसिंह, राजा जयसिंह के नाम पे जयपुर बना हुआ है। तो वो बड़ा वैष्णव था, बहुत सुंदर वैष्णव था वो, उसने आश्वासन दिया वैष्णवों को कि आप चिंता मत करना, गोविंद जी की रक्षा मैं करूँगा। और आप कभी भी हम सामान्य स्तर पर राजा का घर है ना, वो शहर के या किसी भी जिले के सेंटर में होता है, तो राजा जयसिंह ने वो सिटी को ऐसे बनाया कि 7 द्वार का एक शहर जैसा कस्बा बनाया उसने गोविंद जी के लिए। आज भी वो 7 द्वार ऐसे हैं कि उस समय हाथी और रथ भी जाता था घोड़े का उसमें से प्रवेश करके, आज बस जाती है लग्जरी बस, इतना ऊंचे दरवाजे हैं, और वो 4 दरवाजे हैं और हर दरवाजा हर दिशा में 7 है, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर में 4 एंट्री है उसकी, हाथी घोड़े और हमारे आज की बसेस, और आप एक गेट से एंट्री करेंगे तो वो 7 गेट हैं, और उसके बीच में राधा गोविंद जी विराजमान है, और वो शहर के सेंट्रल पोजीशन में है, और जयसिंह राजा के नाम पर उसका नाम पड़ा जयपुर। लेकिन राजा ने अपना महल राजा अपने शहर के सेंटर में नहीं बनाया। जब भी हम जयपुर जाते हैं ना अभी, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, और मंगला से लेकर सारी आरती अटेंड करेंगे जो करना चाहिए आपको जयपुर जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर कोई ऐसा एक संप्रदाय नहीं है जो अपने शिष्यों को प्रीच कर रहे हैं आपको मंगला में आना चाहिए, हम अटेंडेंस रखेंगे, आपको ब्रेकफास्ट नहीं देंगे, ऐसा कुछ वहाँ पर मूवमेंट नहीं है। लेकिन जयपुर वासी अपने आप ही, ऑफ सीजन हो, मतलब कोई उत्सव नहीं हो, कोई फंक्शन नहीं हो, जन्माष्टमी नहीं हो, कोई ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी 2000 लोग मंगला में आते हैं सुबह 5 बजे। कोई स्कूटर से आता है, कोई मोटरसाइकिल से, कोई गाड़ी से, कोई कुछ कुछ, लेकिन 2000 लोग मिनिमम मंगला में रहते हैं। तो उसके बाद वाली आरती में 3000 लोग रहते हैं, फिर राजभोग में 5000 लोग रहते हैं, और संध्या आरती में 5000 लोग रहते हैं। ये हर रोज का है, आप किसी भी समय जाइए। इसका अर्थ ये हुआ कि जयसिंह होकर अभी 400 साल हो गए, लेकिन जयसिंह राजा ने जो वैष्णव कल्चर एस्टैब्लिश किया है उसका ये परिणाम है कि आपको किसी संप्रदाय में होने की आवश्यकता नहीं है। हम जयपुर वासी हैं, हम गोविंद देव के पूजक हैं, हम गोविंद देव को रोज देखेंगे, इतने वहाँ के लोगों में भगवान के प्रति श्रद्धा है कि मैं एक विवाह करने के लिए वहाँ पर गया था पुरोहित के रूप में, जयपुर में एक विवाह किया मैंने पुरोहित के रूप में। तो वो जो केटर था ना केटर, उसको मैंने कहा कि हमारा ऐसा है कि हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, फिर हम लोग प्रसाद जो है वो लोगों को बांटते हैं शादी का, तो आइए आइए आप आपका सब लेके आइए हम लोग। मैंने कहा था कि हम फोटो लगाएंगे, ऐसे करेंगे, थाली बनाएंगे, तुलसी रखेंगे। तो जब मैं वहाँ पर गया तो राधा गोविंद जी के बड़े फोटो का ऑलरेडी उन्हें भोग लगा चुका था। वो इतना नम्र था फिर भी ऐसा नहीं बोल रहे, अरे आप क्या, हमारा ऑलरेडी भोग लग चुका है, ऐसा नहीं बाबा। उन्होंने कहा कि नहीं आपका जो है आपके जी। लेकिन मैं जब गया तो बहुत सारे प्लेट्स में ऑलरेडी सारे आइटम गोविंद जी को अर्पण किए थे, फिर भी वो कह रहे थे कि आपके भगवान को भी चढ़ाओ। हाँ मैं थोड़ा दंग रह गया देख के, तो बिजनेसमैन है वो, उसको कोई भोग लगाने की जरूरत नहीं है। नो लहसुन नो प्याज बाय रूल हम बनाते ही नहीं किसी भी शादी में। और हमारे अभी हमारा एक कास्ट है गौड़ सरस्वत ब्राह्मण, हमारे कास्ट में भी हम जाके शादी में पूछते हैं इसमें है क्या लहसुन प्याज, तो बोला हाँ ये कोरमा में है, इसमें है, उसमें है, ये दो में नहीं है। ट्रेडिशनल फूड बनता ही नहीं अभी, ब्राह्मणों की शादी में लहसुन प्याज नहीं सर्व करते हैं। लेकिन अभी हमारे कास्ट में सारी शादियों में यही चलता है, चाइनीज चाहिए उनको लहसुन प्याज के साथ, अजीनोमोटो के साथ सब चाहिए। और हमको जाके पूछना पड़ता है, पहले सावधान होके उसका हम भोग लगाते हैं फिर खाते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। लेकिन जयपुर में ऐसा नहीं है, हमने दो यात्रा की है जयपुर में, इतना बढ़िया प्रसाद दिया है उन्होंने, इतना प्रेम से, इतना स्वादिष्ट, और सारे कुक्स ने राधा गोविंद जी को भोग लगाया। ठीक है मैंने बोला कि ठीक है, मैं बहुत खुश हो गया, और मैंने भी थोड़ा फोटो लाया था, उसको भोग लगाया। और वो कहा कि आप शाम को कितने बजे आएंगे भोग लगाने के लिए, तो मैंने कहा इतने बजे आऊँगा। नहीं नहीं थोड़ा वो टाइम थोड़ा जल्दी आ सकते क्या, बोला क्यों, मैं दिन में दो बार मैं गोविंद जी के दर्शन करने जाता हूँ। उसका इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, दिन भर का उसका है, लेकिन दो वक्त गोविंद जी में जाना है, तो मुझे भी ले गया वो अपने स्कूटर पे, और दो बार मैं भी गोविंद जी के दर्शन करके आया। तो मैं क्या देख रहा था कि राजा जब धार्मिक होता है तो प्रजा को धर्मशील होना आसान हो जाता है, राजा दुष्ट होता है तो प्रजा को धर्म का पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज 400 साल के बाद में हम जयपुर राजा जयसिंह के द्वारा स्थापित किए गए कल्चर को आज भी अनुभव कर रहे हैं। आप जाएंगे ना सुबह मंगल आरती में तो आप अपने अपने वाहन से जाएंगे, इतना भीड़ होती है, सब व्हीकल आते खड़े होते हैं और सब लोग वापस चले जाते तुरंत, ठंडी का मौसम हो गर्मी का हो कुछ भी हो, ऐसा सिटी है बहुत सुंदर, क्या करें आपको। तो गोविंद जी बड़े ठाट से विराजमान है वहाँ पर, लेकिन ये मंदिर देख के बहुत दुख होता है क्योंकि हम एक नहीं रहे और लड़ नहीं पाए, शस्त्र नहीं उठा पाए, इसलिए हमको दुम दबा के हमारे ठाकुरों को लेकर भागना पड़ा। तो देखिए वो कैसे उन्होंने ना, उनको गोविंद जी नहीं मिले, गोविंद जी जा चुके थे पहले से वहाँ से, और हर एक स्तंभ में जितने भी डायरमास थे उसका सबका मुंह ठेच के रखा है उन्होंने, डिस्ट्रॉयड ईच एंड एवरी स्मॉल स्मॉल फेस ऑफ ईच पर्सन ऑन द कार्विंग इज स्मैश्ड। मतलब कितनी घृणा है उनके मन में हमारे धर्म के प्रति, और कितना हम लोग सहन करते हैं उसको, क्यों करना चाहिए। सहनशीलता तब करनी चाहिए जब हमारे इंद्रियों पर, इंद्रिय विषयों का आक्रमण होता है तब सहन करना चाहिए, जब हमारे धर्म की नींव पर आक्रमण होता है तब सहन नहीं करना चाहिए, तब लड़ना चाहिए। और यही हमारी स्थिति है, हम बिल्डिंग में 48 फ्लैट्स है और हम 40 हैं, वो 8 हैं, फिर भी हम लोग दर्द के रहते हैं उनके बारे में बात करने, 40 लोग हैं, वी आर नॉट हैविंग गट्स टू मेक आवर पॉइंट, ऐसा है। एनीवे सो आप जरूर इस वृंदावन धाम में यात्रा में आए, कथा सुन रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं और भक्ति बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये 7वीं मंजिल है, फाउंडेशन को मत भूलना। फाउंडेशन रहेगा तो 7वीं मंजिल भी होगी, हम भी रहेंगे उस पर और कुछ करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, आपके बच्चों के अंदर ये धर्म के प्रति गर्व को निर्माण करने का प्रयत्न करना कॉन्शियसली, तब हम कह सकते हैं कि हमने अपने बच्चों को कुछ धरोहर दी है, कुछ लेगेसी दी है। अपने बच्चों के अंदर वो विदेश के प्रति गर्व मत उत्पन्न करना कि मैं 12वीं होने के बाद विदेश जाऊंगी, वहां पर मैं पीएचडी करूंगी, वहाँ पे एमएस करूंगी, फिर वहीं रहूंगी, वहीं का हस्बैंड देखूंगी, वहीं सेटल हो जाऊंगी, फिर ग्रीन कार्ड पैदा करूंगी, और उस हर बात पर हम लोग यहाँ पर गर्व से कहेंगे हमारी बेटी तो कनाडा में है, हमारी बेटा अमेरिका में है, वो उधर ग्रीन कार्ड में भी रहती है, उसके बच्चे भी सिटीजन हैं। इसी पे गर्व मत करना। जब बुढ़े हो जाएंगे ना हम लोग समझेंगे कि जिस बात पर हमने हमारे ओके टाइम पे गर्व किया था, वो बोलेंगे कि अभी वो हमारे प्रभु जी बता रहे थे कि अभी बहुत कंपनियां आ गई हैं। वो क्या करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेती है, किसी का पिताजी का देहांत हो गया तो आई टेक कॉन्ट्रैक्ट, आई विल डू एवरीथिंग, डोंट वरी, यू डू नॉट कम, आपको आने की जरूरत नहीं है, पैसे भेजो, आपके पिता का दाह संस्कार सब कुछ हम संभाल लेंगे, ब्राह्मण ब्राह्मण सब सब विधि कर देंगे, आपके ना होते हुए हम लोग किसी को प्रॉक्सी बना देंगे, भाई बिजनेस हो गया पूरा, क्योंकि तो लोगों को आना नहीं है, तो टाइम नहीं हमारे पास, छुट्टी नहीं, प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी मेरा पीएचडी है, ये है वो है, मेरा कंपनी का बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं अमेरिका से स्विट्जरलैंड गया हूँ, 3 महीने मेरा प्रोजेक्ट है, मैं पिताजी गुजरने पर भी नहीं आ सकता, इमेजिन, क्यों नहीं आ सकते, हमने उनको गर्व से प्रोत्साहन दिया था, जाओ अमेरिका में पढ़ो, फिर वहीं पर शादी करने के बाद उसकी हर कदम पर हमने गर्व से सबको बताया था कि मेरा बेटा और मेरी बेटी ऐसे ऐसी है, उसका फल क्या है कि बुढ़े बुढ़ी अकेले रहते हैं परिवार में, एक अंधेरे में कॉलोनी है, 448 फ्लैट्स है उसके अंदर, और हर फ्लैट के अंदर बुढ़े माता पिता हैं, और हर फ्लैट के जो बच्चे हैं वो सब विदेश में हैं, और केवल उधर दिन रात मॉर्निंग वॉक में भीड़ ही भीड़ रहती है, सब माता पिता लोग मॉर्निंग वॉक में बैठते हैं और यही करते हैं, आपका बेटा इंग्लैंड में है, तुम्हारा स्विट्जरलैंड में है, तुम्हारा कनाडा में है, तुम्हारा साउथ अफ्रीका में है, और वो भी आ नहीं रहा है, मेरा चेकअप है, हार्ट अटैक का चेकअप करना है, ईसीजी करना है, यही यही डिस्कशन चलता है, और सबके बीच में एक माहौल क्या रहता है, असुरक्षित भावना का, इनसिक्योरिटी फीलिंग, क्या होगा, नोबडी इज देयर, एम्पल ऑफ मनी इज देयर, मनी क्या करेगा, जो लोनलीनेस है ना उसको कौन संभालेगा, वीडियो कॉल, फोन कॉल, व्हाट्सएप कॉल, उसी में समाधान मानते कि हमने रोज व्हाट्सएप कॉल करते हैं, रोज मामा पापा को देखते हैं, लेकिन आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, और बुढ़ापे में बहुत इतना जिंदगी भर मेहनत करके बुढ़ापे में रोते रोते तन्हाई में मर जाते सब लोग, क्यों, इसकी भी नींव उसमें ही है, अपने धर्म अपने देश पर गर्व नहीं है, विदेश पर ज्यादा गर्व है, वहां जाने के लिए दिल तड़पता है, और धोती कुर्ता पहनने में और देश में आकर उत्सव मनाने में कोई गर्व नहीं है, दैट इज वाई वी आर सफरिंग, वी आर ओनली कॉज ऑफ आवर सफरिंग, हमारे ही भविष्य के दुख का हम ही कारण है, क्योंकि हम गलत चीज पर गर्व करते हैं, ये आज से 10,000 साल का इतिहास है हमारा, यही ऐसा ही चल रहा है, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पृथ्वी ते आचे सर्व नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हरिभव नाम, उन्होंने घोषणा कर दी है, तो हम लोग कहेंगे उनकी घोषणा है तो वो देखेंगे क्या करना है ना, कितना इजी है ना, मैंने थोड़ी कहा था उनको घोषणा करने के लिए, मैं थोड़ी वहां पर था, महाप्रभु आए और उन्होंने अपनी अपनी घोषणा कर दी, पृथ्वी ते आचे सर्व नगर आदि ग्राम, हर नगर में हर ग्राम में मेरे नाम का उद्घोष होगा, गांव गांव में हरिनाम कीर्तन होगा, तो वो करेंगे, मैं थोड़ी करूंगा, नहीं, ये महाप्रभु जी का आंदोलन है, हम उनमें सम्मिलित हो गए हैं, हमें करना है, ये महाप्रभु खुद कहते हैं कि मेरे पास भक्ति के इतने फल है कि मैं अकेले नहीं बांट सकता उसको, महाप्रभु जी का वाक्य है चैतन्य चरितामृत में, आई कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल दिस फ्रूट ऑन माई ओन, आई नीड यू टू पिकअप दिस फ्रूट एंड डिस्ट्रीब्यूट टू अदर्स, तो वी कैन नॉट बी ऐसा इनडिफरेंट, यू नो irresponsible, he will do, she will do, ये हमारा मूड है, I will do, ये मूड होगा ना सबका, तो थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना तो भी हमारा धर्म बहुत आगे बढ़ेगा, लेकिन जब तक he will do, she will do, वो करेंगे ये करेंगे तब मूड रहेगा ना, कोई धर्म की प्रगति नहीं होगी, और जरूरी नहीं कि आपको युवा ही होना चाहिए, बुढ़ा ही होना चाहिए, बुजुर्ग ही होना चाहिए, आदमी होना चाहिए, औरत होना चाहिए, हर एक को थोड़ा थोड़ा गर्व होना चाहिए बस, और वो गर्व से काम करेंगे ना और अपने बच्चों को गर्व देंगे, अपना धर्म आगे बढ़ेगा, और ये जो स्वप्न महाप्रभु जी का है, सब देश में सब घर में सब ग्राम में सब शहर में भगवान नाम का प्रचार होगा, ये बहुत आसान हो जाएगा, इट विल बी अ रियलिटी, और अपने आप भी हो रहा है, भारत में धुआंधार प्रचार हो रहा है, एक हमारी संस्था से भी हो रहा है और बाकी भी संस्था से हो रहा है, धर्म अपराइज में है, लेकिन हम लोग सोते रहेंगे फिर भी उसके अंदर, क्या कहते हैं स्लम्बर, इफ यू स्लीप इन द स्लम्बर मूड, फिर वो नाश होने में कोई मतलब टाइम नहीं लगेगा उसके लिए, तो जागो सब लोग, आज जप कर रहे हैं, आगे भी आना है, आगे भी जप करना है, अभी जगना होगा, तो ऐसे गोविंद जी का मंदिर का ध्वंस हो गया, फिर वहाँ पर दूसरी मूर्ति आके रखी गई, फिर पीछे एक और एक मंदिर बनाया गया, वो जो पीछे उसके और एक मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, प्रतिभू प्रतिभू यानी उसकी जगह पर दूसरी मूर्ति जब रखते हैं तो उतनी शक्ति उस मूर्ति में होती है, बट ओरिजिनल मूर्ति जो है वो जयपुर में है राधा गोविंद जी का, और वृंदा देवी जो है वो कामेवन में रहती है, और वृंदाकुंड में अपनी सेवा के लिए आती है और निवास उनका कामेवन में है। इसके आगे जाएंगे तो ब्रह्मकुंड आता है, ब्रह्मकुंड भी एक बहुत ही पावरफुल जगह है, बहुत सारी उत्कट घटनाएं वहां पर हुई है, एक तो वृंदा देवी का लाभ हुआ है वहां पर तो बात अलग है। ब्रह्मा जी ने कृष्ण के बछड़े और बछिया चुराई, ग्वाल बाल भी चुराए परीक्षा करने के लिए, इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हम ब्रह्मा भी बनेंगे ना तो भी भ्रम और माया का प्रभाव नहीं छूटेगा। ब्रह्मा कौन है? इस पूरे संप्रदाय के प्रमुख है, वो उनके द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ है, भगवान का दर्शन किया है कई बार उन्होंने, भगवान से डायरेक्टली आदेश भी लिया है, इसे डायरेक्ट फर्स्ट सर्वेंट ऑफ कृष्णा। फिर भी वो होता है ना अपना, एक तो अपना एजुकेशन है उस पर बहुत गर्व होता है कि आई एम MBA, आई एम MD, आई एम MBBS, आई एम PhD, आई एम BTech, MTech, फ्रॉम अमेरिका, इसका एक अलग गर्व होता है, और वो उसके ऊपर जो पोजीशन मिलता है कि अभी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ वो कंपनी का, मैं अभी इसमें क्या कोको कोला में हूँ, मैं इसमें हूँ उसमें हूँ, और मैं अमेजोन में हूँ, और मैं क्या बिल गेट्स की कंपनी में हूँ, सिलिकॉन वैली में काम करता हूँ, या मैं इधर भी हैदराबाद में हूँ, मैं इधर बेंगलोर में हूँ, तो वो जो पद है उसके ऊपर मिलने वाली तनख्वाह जो है उसके ऊपर और दो लेयर चढ़ जाते हैं गर्व के। तो ये तो सारी चिंटू चीज़ें हैं। हाँ भाई, आप बोलेंगे 3 लाख करोड़ का कोई नया फैक्ट्री डाल रहे हैं, ह्यूज, इंडिया का एक साल का बजट हो गया वो ऑलमोस्ट, लेकिन ब्रह्मा के सामने कोई तुलना कर सकते क्या उसकी? ब्रह्मा का पोजिशन, ब्रह्मा का नॉलेज, ब्रह्मा का अधिकार, ब्रह्मा का साम्राज्य, ब्रह्मा की फैमिली, नोबडी कैन इमेजिन। तो गर्व वहीं पर भी है, वहां पर भी है। तो ब्रह्मा भी, ब्रह्मा होने के बाद भी ब्रह्म से मुक्त नहीं होते, इसका भी कारण है, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास कुछ गंधर्व आए थे, उन्होंने कहा कि भगवान अभी सुना है हमने कि वैवस्वत मनु का 28वां दापरयुग चल रहा है, तो हमने सुना है भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है पृथ्वी पर, तो हमको देखना है उनको जाके, परमिशन दो। तो ब्रह्मा ने उनको परमिशन दिया। ध्यान से सुनिए, गंधर्व लोग गंधर्व लोक के हैं, उनका एक ऐश्वर्य भाव है, क्योंकि गंधर्व यानी क्या, बाय बॉर्न बाय बर्थ दे आर ऑल ग्रेट सिंगर्स, नो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, हाउ मंकी इज बॉर्न एथलेटिक, है ना? मंकी तो कोई भी आपके ओल्ड जिम्नास्टिक चैंपियन को, ओलंपिक चैंपियन को हरा सकता है आसानी से, बच्चा भी, क्योंकि ऐसा उसका बर्थ है कि वो बर्थ से ही उसका शरीर एथलेटिक शरीर है, कोई कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे गंधर्व जन्म से ही गायक होते हैं, किन्नर लोग जन्म से ही नृत्य कुशल होते हैं, विद्याधर जन्म से ही श्लोक शास्त्र पठन उनका बाय हार्ट होता है सब कुछ, वो जन्म ही ऐसा है। तो गंधर्व अपने वो देव देवलोक के गर्व से वहाँ गए नीचे, शुद्ध भक्त बनकर नहीं गए, ऐसे ही अपने टूरिस्ट के भाव से गए, और क्या देख रहे हैं, भगवान को भगवान ऐसे छीना झपटी कर रहे हैं, भगवान का कोई डब्बा खींच रहा है, कोई खींच रहा है, कोई भाग रहा है, कोई भगवान को ताने दे रहा है, तेरा नाना मूर्ख है, वगैरह वगैरह सब चल रहा है। तो उनको ना जरा लगा कि अरे तो भगवान को मिलने आए थे, ये तो बालक है, क्या भगवान कैसे हो सकता है, सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, सब खेल रहे हैं, नदी में कूद रहे हैं, कोई उसको धोती खींच रहा है, थोड़ी भगवान ऐसे होते हैं, हम तो भगवान को कितना बड़ा श्लोक बोल के वंदन करते हैं, फिर भोग लगाते हैं, फिर बड़ी इतना आरती होती है, इतना ऐश्वर्य संपन्न पूजा होती है। तो उन्होंने भगवान को देखा, फिर भी वो समझ नहीं पाए, क्योंकि उनको उस विजिट में शुद्ध भक्त का संग नहीं मिला था, वैसे ही टूरिस्ट के रूप में गए थे। इसलिए आप भी कभी यहाँ पर टूरिस्ट के भाव में मत आना, कभी भी किसी डिवोटीज़ के ग्रुप के साथ आना जिनको पता है यहाँ पर क्या देखना है और कैसे देखना है। तो वो सब देखा उन्होंने जो उनको देखने का भाग्य मिला, लेकिन ब्रह्मा के पास जाके बताया कि वो बालक जो था वो भगवान थोड़ी है, वो देख रहे हैं हम तो सामान्य बालक है, वो गाय चराता है, गोबर में खेलता है, गोमूत्र में डर्टी हो जाता है, धूल से मखा रहता है, तो उनका संग करने से ब्रह्मा की मति भी भ्रष्ट हो गई, ऐसे शास्त्र में लिखा है। ब्रह्मा जी के मन में भगवान की परीक्षा करने का क्यों भाव आया? क्योंकि एक तो अगासुर नाम के भयंकर राक्षस का वध उस बालक ने किया, ये न्यूज़ ब्रह्मालोक में आई, और अगासुर का जो आतंक था, दरारा था, दहशत थी, उससे ब्रह्मालोक के लोग भी भयभीत थे। ब्रह्मालोक तक उसका दहशत पहुंची थी, और ये खबर दे रहे हैं कि हम गए थे तो वो बालक है, वो क्या करता है पता नहीं चल रहा है। उसके बाद सेकेंड न्यूज आती है कि उसी बालक ने अगासुर का वध कर दिया, तो ब्रह्मा जी का भ्रम और बढ़ गया, जो कुछ संगति से भ्रष्ट हो गई थी दिमाग, वो और ज्यादा बढ़ गया। तो उनका मन में ठाम विचार हो गया, अभी मैं जाके परीक्षा करूंगा उनकी। और फिर परीक्षा करने आए, देखो कहीं ना कहीं उसका कान के माध्यम से कंटेमिनेशन होता है, ध्यान रखना। ये कान जो है ना, ये बहुत पावरफुल चीज़ है, ये आपको अगर अच्छा सुनेंगे इससे तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे, और यहाँ वहाँ की बातें सुनेंगे, प्रजल्प सुनेंगे, गॉसिप सुनेंगे, तो नरक पहुँचा देगा ये आपको। क्योंकि कान इतनी शक्ति, पावरफुल शक्ति है कि आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है और भगवद्धाम भी पहुंचा सकती है। वेर यू गिव योर ईयर टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किसको कान देना है, श्रवण किसको सुन करना है, ये आपको बुद्धि के सर पर करना है। किसी की कोई बात सुनना नहीं है, हर चीज़ को। ब्रह्मा हुआ तो क्या हुआ, गलत व्यक्ति से कुछ गलत बात सुनी तो उसका भी दिमाग भ्रष्ट हो गया। फिर वो आगे बहुत कुछ हुआ, उन्होंने बच्चे को चुराया, ग्वाल बालों को चुराया, भगवान को जुदा कर दिया उनसे, फिर भगवान ने बहुत चमत्कार किए। फिर ब्रह्मा को भगवान ने सारे ग्वाल बालों को अपने आप को विस्तारित किया, और वो सारे ग्वाल बालों को विस्तारित कर अपने को विस्तारित करने के बाद में हर एक व्यक्ति को विष्णु रूप में दिखाया। जो ग्वाल बालों को ले गए, बछड़ों को ले गए, वो सब कृष्ण बने, पर वैसे ही घर जगह जैसे घर से आए थे। एक साल तक लीला चलती रही, सारे कृष्ण 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 ही है। और जब एक क्षण के बाद, यानी हाँ के एक साल के बाद ब्रह्मा लौट के आए मजा देखने के लिए, क्या कर रहे हैं बालक, तो सारे बालक वैसे के वैसे ही हैं, सारे ग्वाल बाल बछड़े बछिया सब आराम से वैसे ही हैं जैसे वो छोड़ के गए थे। उनके भ्रम में और भर डालने के लिए भगवान ने हर ग्वाल बाल, हर बछिया, हर बछड़ा को विष्णु बना दिया। और अभी भगवान ऐसे बीच में बैठे और सारे अनंत विष्णु ऐसे खड़े हैं इधर उधर। उसमें और भ्रम डालने के लिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने हर एक विष्णु के सामने 33 करोड़ देवता का एक सेट पैदा किया, तो वो विष्णु की पूजा कर रहे हैं। तो शंकर भी है, ब्रह्मा भी है, देवी है, सब लोग हैं उसके अंदर, सारे विष्णु की पूजा कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितना उधर बिल्डरिंग सिचुएशन होगा। आप सोच रहे हैं कि हमने इनके बचड़ों को चुरा लिया, मजा देखने के आए, और बिविल्डर होते जा रहे हैं। तो उधर ब्रह्मा को पता चला कि ये बालक साधारण बालक नहीं है, तो मेरे भगवान है, और मैंने क्या किया, उनके बचड़ों को चुराया, जुदा कर दिया, लीला में भंग कर दिया, आनंद में भंग कर दिया, ब्रज लीला में भंग कर दिया। तो बड़ा पश्चाताप हो उनको। और ये सब जो कर रहे हैं ना, वो चोरी करके लेके जा रहे हैं, पहले आकाश में आके देख रहे हैं, फिर चोरी कर रहे हैं, फिर ले जा रहे हैं, फिर वापस आके देख रहे हैं, ये सब ब्रज में ही कर रहे हैं वो। लेकिन उनको तब तक ब्रज का दर्शन नहीं हुआ जब तक वो भ्रम में थे। उनको ब्रज का दर्शन कब हुआ, वृंदावन का दर्शन कब हुआ, जब उन्होंने ये हृदय में स्वीकार किया कि ये बालक बालक नहीं है, मेरा भगवान है। और जब मैं कह रहा हूं कि अब ब्रज में आए वो और ब्रज का दर्शन नहीं किया, मतलब क्या उसका, उसका अर्थ यही है कि जब हम ब्रज के रज के हर कर्ण को चिंतामणि के रूप में देखते हैं, हर गाय को कामधेनु के रूप में देखते हैं, और हर वृक्ष को कल्पवृक्ष के रूप में देखते हैं, तब हमारा ब्रज का दर्शन होता है। नहीं तो हमें गटर दिखता है और सुअर दिखता है और कुत्ता दिखता है भौंकने वाला और वो बंदर दिखता है छीनने वाला, तो उससे आपको ब्रज का दर्शन नहीं हो रहा है, आपका टूर हो रहा है। हमको प्रयत्नपूर्वक ये सब सुन सुनकर प्रयास करना है कि हर कण यहाँ का चिंतामणि है, हर गाय यहाँ की कामधेनु है, हर वृक्ष यहाँ का कल्प वृक्ष है। तो जब ब्रह्मा को पश्चाताप हुआ तब ब्रह्मा ने प्रणाम किया, लेकिन भगवान ने उनकी स्तुति ना सुनी ना प्रणाम भी स्वीकार किया, क्योंकि ब्रह्मा ने अपने अपराध से भक्तों को भगवान से अलग कर दिया था। भगवान वैकुंठ छोड़ के क्यों आते हैं, अपने भक्तों का संग करने के लिए, और ये देवता अपना अपना पावर को मिसयूज करके भगवान को भक्तों से अलग कर देते हैं। कहते ब्रह्मा का प्रार्थना सुनकर भी भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया। तब ब्रह्मा ने ब्रज भूमि की 84 कोस की दंडौती परिक्रमा की है। आप रोड पे देखते हैं ना, रोड पे प्रणाम करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, प्रणाम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो पूरे 84 कोस ब्रज मंडल का दंडवती परिक्रमा ब्रह्मा ने किया, यानी ब्रज रज का, वो चिंतामणि रज का आश्रय लिया। तब जाकर धाम ने ब्रह्मा जी को माफी दी है, तब भगवान ने माफी दी उनको। तो साहजिक है ना, ये ब्रह्मा ने सब कुछ किया लेकिन ब्रह्मा जी को बहुत पश्चाताप हो रहा था। अब ब्रह्मा को ये अनुभूति भी हो रही थी, ये सब क्यों हुआ, क्योंकि मैं ब्रह्मा हूं। अगर कोई सिंपल सा व्यक्ति होता ना तो मुझे इतना गर्व नहीं होता और मेरे पास इतनी शक्ति नहीं होती कि मैं परीक्षा करूं। समझो आपको इच्छा हो रही है कि मैं बजरे छीन लूँ, आपको शक्ति नहीं है उस छीनने की, तो आप नहीं छीनते। लेकिन ब्रह्मा थे, इनका सब शक्ति थी, तो इच्छा भी हुई परीक्षा करूं। इधर परखम नाम की जगह है, परखम, यहाँ पर भगवान ने परीक्षा की है, उन्होंने परीक्षा की भगवान की। तो गलत विचार मन में आता है और गलत विचार को कार्यान्वित करने के लिए शक्ति होगी तो आदमी गलत काम करेगा। और गलत विचार मन में आता है लेकिन आप तो दुर्बल हो, शक्ति नहीं है, तो चुपचाप बैठ जाएंगे आप। एक तरह से अच्छा है, वो सीधा व्यक्ति होना अच्छा है। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि मैं ब्रह्मा था ना, मैं ब्रह्मा हूं ना, इसके लिए इतनी शक्ति थी मेरे पास, इसलिए मुझे वो दुरुपयोग करने का, परीक्षा करने का विचार मन में आया। तो ये भगवान, मुझे अभी ब्रह्मा का पोजीशन चाहिए नहीं, प्लीज डोंट मेक मी ब्रह्मा अगेन, प्लीज डोंट मेक मी ब्रह्मा अगेन। और सब कुछ हो गया, भगवान ने फिर उनको दंडवत की बाद में माफ भी किया, फिर जाओ। भगवान भी हमारे कैसे हैं, भगवान को ना एक पैसे का इंटरेस्ट नहीं है इनकी प्रार्थना सुनने में। वो बृहद भागवतामृत में साफ साफ बताते हैं कि ये देवता लोग बीच बीच में आके उसमें व्यवधान डालते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं। तो एक तो व्यवधान का समय गया मेरा, फिर इनको पश्चाताप हुआ तो वो उनकी प्रार्थना सुनने का भी समय गया, और तब तक वेट करना है, तब तक मेरी लीला में भंग पड़ा है, वो भंग ही पड़ा हुआ है। और मैं वैकुंठ छोड़ के यहाँ पर आया हूँ जो करने के लिए, उसमें ये लोग अपना आके बीच में निवेदन देते रहते हैं, हे भगवान माफ करो, आप परम भगवान हो, आप सृष्टि के रचयिता हो, आप सबके मालिक हो, और हमने गलती किया है, फिर क्षमा कर देना, अगली बार ब्रह्मा नहीं बनाना। और भगवान वेट कर रहे हैं, भाई तो कब फिनिश करेगा, कब मैं खेलने जाऊंगा। एक साल के बाद में बच्चे लौट के आए हैं, वो वेट कर रहे हैं जमुना किनारे, उनको कुछ याद नहीं है मेरी माया की वजह से, और मुझे आके उनको खेलना है उनके साथ। एक साल तक मैं खुद के साथ ही खेलता रहा है ना, अब मेरे ओरिजिनल फ्रेंड्स आ गए हैं, वो लोग वेट कर रहे हैं, और तेरी प्रार्थना समाप्त नहीं हो रही। ठीक है, हो गई। फिर भगवान खेलने गए और ब्रह्मा जी गए, और ब्रह्मा जी को इतना पश्चाताप हुआ, इतना पश्चाताप हुआ कि कितना प्रेम है भगवान का उन बालकों के ऊपर, उनके साथ खेलने के लिए तरस रहे हैं। तो हंस पे बैठे उड़े, तो उड़ ही नहीं पाए, नीचे उतरे, वापस इधर ही उतरे। यानी कि यहाँ पे जो हाईवे है ना अपना, हम लोग जाते हैं ना यहाँ से कोशी और दिल्ली, तो यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर आगे गए तो वो जगह आती है जहाँ पर भगवान की परीक्षा की ब्रह्मा ने, परखम नाम के गांव में। फिर सही नाम के गांव में उनको पश्चाताप, अरे बाप रे भगवान ही है ये। फिर चौमुआ नाम के जगह में उन्होंने स्तुति की है, चार मुँह से नाम है चौमुआ उस जगह का, तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। फिर हम लोग यहाँ बैठे हैं, इससे यहाँ से 4 किलोमीटर आगे ब्रह्म कुंड है, तो कितना हो गया अंतर, 15 किलोमीटर अंदर हो गया। ब्रह्मा के लिए क्या है, वो तो इस हॉप्स की पेन जंप, तो वहाँ से उड़े और ये तुरंत उतर गए वृंदावन में आके उतर गए। और इतना रोए, इतना रोए, इतना हो रहे, कितनी आँखें हैं उनकी, 8 आँखों में से इतना रोए कि ये जो अग्रसेन आश्रम है ना और ये भक्ति योग आश्रम है, इसका पूरा इलाका उसमें बैठ सकता है। द होल थिंग कैन बी लिफ्टेड, भक्ति विधान द हॉस्पिटल कैन बी लिफ्टेड एंड पुट इन ब्रह्मकुंड, फिर भी जमीन के ऊपर नहीं आएगा वो। इतने अश्रु बहाए ब्रह्मा जी ने वहाँ पर पश्चाताप के, कि मैंने क्यों किया ऐसे, क्यों ब्रह्मा हूँ मैं, क्यों ब्रह्मा ने मुझे, भगवान ने ब्रह्मा का पोजीशन दिया, क्यों इतनी पावर दी मुझे, नहीं चाहिए मुझे। और क्या ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं, कितने सुंदर सुंदर श्लोक है भागवत में, वो कहते हैं कि मुझे ना ब्रज में आप पत्थर ही बना दो, एक लता बना दो, एक घास का पत्ता बना दो, एक कीटक बना दो, किस भी निचली योनि में जन्म दो, चलेगा मुझे, ब्रह्मा मत बनाओ। अगर वो कीटक का जन्म भी मुझे गौरवशाली जन्म मिलने के मैं योग्य नहीं हूँ ऐसा आपको लगता है, समझो कि मैं कीटक बनने के भी योग्य नहीं हूँ, इतना बड़ा पाप किया हूँ, इतना मुझे वृक्ष लता पता कीटक गधा बैल कुछ भी बनने का भाग्य नहीं होगा, कोई बात नहीं, वो भी एक्सेप्टेड। मुझे ना ब्रज की ओर जाने वाला जो रास्ता है उस रास्ते का पत्थर बना दो मुझे, ताकि ब्रज की ओर ब्रज के अंदर जाने के लिए वैष्णव जन आएंगे, उनके चरण मेरे ऊपर पड़ेंगे और वो ब्रज में जाएंगे। ऐसे कहा है ब्रह्मा जी ने, इतना पश्चाताप किया है, अपने आप को इतना न्यून भावना का अनुभव किया है कि मैं अगर ब्रज में जन्म लेने के भी लायक नहीं हूँ तो मुझे ब्रज के बाहर ब्रज की ओर जाने वाले रास्ते का पत्थर बना दो। और ये कोई डायलॉग नहीं मान रहे, वो कविता नहीं बना रहे, दिल से बोल रहे हैं, रो रहे हैं, रोके रोते बोल रहे हैं। तो ब्रह्मकुंड है ना, उनके पश्चाताप के अश्रु आए हैं, बहुत तीव्र जगह है वो, दिखने में बहुत सुंदर कुंड है, वाह क्या आप फोटोग्राफी करेंगे सेल्फी निकालेंगे सब यहाँ से वहाँ करेंगे, लेकिन आपको चिंतन करना चाहिए कि पश्चाताप कैसे किया जाता है, वो कैसे करना चाहिए और वहाँ पर जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। उससे भी उनका दिल नहीं भरा, वहाँ अश्रु बहा के उड़े तो फिर आगे उत्तर दिशा में गए तो उधर जाके उतर गए, बोले अभी मेरे को ना यहाँ से जाने के पहले कन्फर्म ही करना पड़ेगा कि अगले जन्म में ब्रह्मा नहीं बनूंगा मैं। दो उनके मन में संकल्प थे, दो संकल्प थे, हरे कृष्णा। तो उनके मन में दोबारा उतरने के बाद दो संकल्प थे कि आई हैव टू मेक श्योर कि आई विल नॉट बिकम ब्रह्मा नंबर वन, एंड सेकेंड संकल्प था कि मैं तुच्छ व्यक्ति बनूंगा। केवल ब्रह्मा नहीं बनना एक बात है, फिर इंद्र बन सकता है, वायु बन सकता है, चंद्र बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन ब्रह्मा नहीं बनूंगा और एक यक्कश्चित तुच्छ व्यक्ति बनूंगा। ये दो संकल्प लेके वो दोबारा उतरी और उन्हें तप किया वहाँ बैठकर, अभी रोए नहीं वो, अभी निश्चय है उनके मन में कि मुझे बनना ही नहीं है किसी भी हालत में। तो तप किया, तो वो कौन सी जगह तप किया बताओ? नवद्वीप धाम, मायापुर धाम में बैठ के उन्होंने तप किया। और द्वापर युग में ये घटना चल रही है, तो जहाँ पर महाप्रभु चैतन्य का जन्म होने वाला है आगे अंतरद्वीप में, वहीं पर ये तप कर रहे हैं। और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने पूरे युवा अवस्था में पूरे अलंकार के साथ उनको दर्शन दिया। वहाँ पर तो जन्म लेने वाले बालक के रूप में, वहाँ पर पूरे चैतन्य महाप्रभु ने युवा अवस्था का दर्शन दिया ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा ने बोला मुझे ब्रह्मा मत बनाना, मुझे तुच्छ बनाना। तो चैतन्य महाप्रभु ने वरदान दिया कि तुम ऐसे बनोगे, ना हिंदू रहोगे ना मुस्लिम रहोगे, यानी मुसलमान के घर में जन्म लोगे लेकिन कृष्ण का नाम लोगे तो मुसलमान भी आपको काफिर बोलेंगे और हिंदू भी तुच्छ बोलेंगे, ऐसा आपका जन्म होगा, लेकिन फिर भी आप नामाचार्य होंगे, वरदान भी है और एक तुच्छता का गारंटी भी है। तो पूरा जीवन वो तुच्छता के लिए उन्होंने अनुभव किया है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, दोनों तरफ से रिजेक्टेड थे वो, है ना देखो। लेकिन ब्रह्मा जी को वो चाहिए था, ब्रह्मा जी ने वो वरदान गारंटी किया उसका, और फिर वो चले गए ब्रह्मा लोक में। फिर अगले जन्म में आए तो वो हरिदास ठाकुर बनकर आए, फुलिया ग्राम में उनका जन्म हुआ। तो ये पूरी कहानी है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी का देखो ऐसा मत समझना कि अभी मैंने बताया इस तरह से बताया उस तरह से बताया कि ब्रह्मा जी बहुत तो ऐसे अच्छे व्यक्ति नहीं है ऐसा लगेगा आपको, लेकिन ब्रह्मा जी इतने सरेंडर्ड है कृष्ण से कि कृष्ण उनसे एक रोल अदा कर रहे हैं। हाँ भीष्मदेव को उन्होंने उधर को डाला कौरव की पार्टी में, कि भीष्मदेव उस जमाने के सर्वोच्च व्यक्ति थे, द टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी ऑफ द होल यूनिवर्स वो भीष्मदेव थे, 14 लोकों में ही उनका आदर था। तो वह अगर ऐसा व्यक्ति भी असत्य के पक्ष में युद्ध करता है तो उसका भी नाश होगा, ये दिखाने के लिए ब्रह्मा हिरण भीष्मदेव को भगवान ने यूज किया वहां डाल के, टू प्रूव यू एंड मी, इवन इफ यू आर भीष्मदेव एंड यू आर साइडिंग अ रॉन्ग साइड यू विल बी डिस्ट्रॉयड। तो इसलिए ब्रह्मा भी, अगर आप ब्रह्मा भी बनते हो तो भी आप भ्रमित हो सकते हो और अपराध कर सकते हो, इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को यूज किया है रोल में। अर्जुन को भी यूज किया उन्होंने भ्रमित होकर प्रश्न करने के लिए, क्या करूं क्या करूं, युद्ध करूं कि भाग जाऊं यहां से, तो गीता का पात्र बनाया उसको, वही बताया कि अर्जुन जैसा व्यक्ति भी भ्रमित हो सकता है, उसको भी ज्ञान की और गुरु जी की आवश्यकता है। तो ये इनकी महानता है कि ऐसे ये कैसे ना, कभी कभी रिस्पेक्ट कम हो जाता है ना हमारा ये सुन के, बाद रही है वो ब्रह्मा जी का प्रार्थना सुनने को तैयार नहीं है, माफ भी नहीं कर रहे हैं, उनको दंड दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। ये तो कथा है हमको सीखने के लिए, लेकिन वास्तव रूप में हमको ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मा जी एक बहुत सुंदर रोल अदा कर रहे हैं। इंद्र को भी भगवान को भी उपयोग में लाते हैं, कभी वो यहाँ अपराध करता है, वहाँ अपराध करता है, वर्षा कर देता है, कुछ कुछ करते रहता है। इसका मतलब इंद्र इंद्र के पतित व्यक्ति नहीं है, यही बता रहे हैं कि अब देवेंद्र भी होंगे ना तो भी हमारे अंदर ये गलतियां हो सकती हैं। हर स्थिति में आप देव भी हो, देव इंद्र भी हो और कुत्ता बिल्ली भी हो, तो हर स्थिति में हमको कृपा की आवश्यकता है और भगवान की आवश्यकता है। वी आर नॉट फ्री कि ये पोजिशन में आ गए तो कोई चिंता ही की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर स्थिति पतनशील होती है, एवरी सिचुएशन इज फैलिबल। तो ब्रह्मकुंड में आप वो जाके चिंतन कर सकते हैं। फिर हम जाएंगे ज्ञान गुदड़ी, ज्ञान गुदड़ी। हाँ, नाम देखिए कैसा है, ज्ञान यानी नॉलेज। रामचरित, थोड़ा गर्म पानी दो। तो जिस जगह पर ब्रह्मा जी का ज्ञान गुदड़ी हो गया, सॉरी उद्धव जी का ज्ञान गुदड़ी हो गया, गुदड़ी यानी क्या, वो पुराने जमाने में ना हमारे घरों में हमारी माताएं, दादियां, नानियां पुरानी साड़ियाँ इकट्ठा करती थी और सिलाती थी उसको, और उसकी वॉम नरम नरम मुलायम गुदड़ी बनती थी। हाँ, गुदड़ी, गुदड़ी हमारी भाषा में बोलते गुदड़ी, मराठी बोलते गुदड़ी, हिंदी बोलते गुदड़ी, लेकिन वो अनेक साड़ियों का एक मिलाप होता है और फिर सिलाई करते हैं, उसको ओढ़ते हैं सर्दियों में। बहुत ज़्यादा गर्म है। उद्धव जी बृहस्पति से ज्ञान प्राप्त किए थे, वो बृहस्पति के शिष्य थे। पृथ्वी पर रहते हुए बहुत कम लोगों को बृहस्पति का गुरुत्व प्राप्त हुआ है। उसके पहले थे भीष्मदेव, दूसरे हैं उद्धव जी, जो यहाँ के जन्म लेने के भी देवताओं के गुरु के शिष्य बने। वो बहुत दिव्य ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने। तो मैंने कहा ना आपको, जैसे हमारी डिग्रियाँ बढ़ती हैं तो हमारा गर्व भी बढ़ता है। तो उद्धव जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, फिर भी भगवान ने उद्धव जी को यूज़ किया कि बृहस्पति का शिष्य होने पर भी एक प्रकार का गर्व होता है, वो भी उतारना चाहिए भगवान की भक्ति में। तो उद्धव जी को भगवान ने भेजा गोपियों को सांत्वना देने के लिए कि आप जाइए, हमारी गोपियां बहुत रो रही है, बिलख रही है, आप बड़े विद्वान हो, आप सब परामर्श के तरीके जानते हो, आप बड़े अच्छे काउंसलर हो, आपके पास ज्ञान भी है, आप उनको सांत्वना दो, शांत करो, मैं भी जा नहीं सकता वहाँ पर, उनको कहो मैं आऊँगा, तब तक आप उनको जाके थोड़ा सा शांत कर देना। तो उद्धव जी जैसे हम डॉक्टर होते ना, तुम जो रात को कॉल आता है पेशेंट को बहुत छाती में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब आइए घर पे, तो हम लोग फ़ोन पे 2-4 प्रश्न पूछ लेते हैं, क्या पसीना आ रहा है क्या बहुत, लेफ्ट साइड में पेन जा रहा है क्या, उल्टी हो रही क्या, ऐसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, 2-4 प्रश्न पूछते हैं, हमको समझता है कि भाई हार्ट अटैक हो सकता है या सीवियर एसिडिटी हो सकती है, ऐसा 4-5 चीज़ें, और वो दवाई हम लेके साथ चलते हैं, लेट अस सी, वहाँ जाके पोर्टेबल एसिज निकालेंगे, फिर दिखेगा तो ये करेंगे, नहीं दिखेगा तो वो करेंगे, सब ऐसा 2-4 चीज़ें मन में आइडिया करके चले जाते हैं। वैसे ही उद्धव जी को उनकी स्थिति का वर्णन कृष्ण ने किया था, मतलब पेशेंट के रोग का वर्णन ऑलरेडी कर दिया था, और आपको उनको ट्रीटमेंट देना ये भी बताया था। तो ये रास्ते में सोच रहे हैं कि मैं ना उनको योग सिखाऊंगा, प्राणायाम सिखाऊंगा, तो योग प्राणायाम करने से उनका मन संतुलित होगा, फिर वो सुख दुख से परे हो जाएंगे, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ऐसे मैं उनको विरक्त बना दूंगा, उससे उनका दुख शमन हो जाएगा और भगवान की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट प्लानिंग करके जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो ब्रज में प्रवेश किए ना, वृंदावन में पहले प्रवेश किए, तो उनका सारा ज्ञान गुदड़ी हो गया, उदरी। कैसे गुदड़ी होगा बताता हूँ आपको मैं। तो वो जब आए जब शाम का समय था और सब गोपियां दूध निकाल रही थी गाय का, तो दूध बर्तन में गिरने का बहुत सुंदर ध्वनि हो रहा था। उसके बाद में उसने देखा कि यमुना किनारे बहुत सारी गोपियां पद्मासन में बैठकर ध्यान लगा के बैठी हुई। उसको क्या लगा, अच्छा है थोड़ा बहुत नॉलेज इनको योग का है तो मैं योग जल्दी सिखाऊंगा उनको। तो वो गए उनके पास, बोला आप क्या ध्यान कर रही हो। तो वो इतने सुंदर थे और रथ भी कृष्ण ने अपना दिया था उसको और अपना मुकुट भी दिया था, ताकि उद्धव जी का एक विशेषता थी, उद्धव जी दिखने में कृष्ण के जैसे ही थे, जैसे सुबल जो है दिखने में राधा रानी जैसा ही है, सुबल सखा। तो वो जब आए रथ से तो एक बार गोपियां भाग के गई थी उनको, कृष्ण आए कृष्ण आए, लेकिन जब गौर से देखा तो पता चला कि कृष्ण का रथ है, कृष्ण का मुकुट है, लेकिन कृष्ण नहीं है, दूसरा ही व्यक्ति है, तो पीछे हट गए। फिर ये उनको पूछ रहे हैं कि आप अभी क्या कर रहे हो, तो वो कह रही हैं, देखो क्या कह रहे सुनो। वो कह रही है कि हम बहुत सीधे हृदय की थी गोपियां, सिंपल हार्टेड, और ये कृष्ण जो है जिन पर हमारा प्रेम हुआ वो बहुत टेढ़े थे, वो टेढ़े कृष्ण जो है वो हमारे हृदय में आके बस गए, तो उनको बसाने के लिए हमारा हृदय भी टेढ़ा हो गया। यू अंडरस्टैंड, समझो आप किसी थैली में कोई टेढ़ी वस्तु रखते हो तो आपको वो थैली भी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि वो एडजस्ट करना है ना वो टेढ़ी वस्तु को। तो हमने इनको हृदय में बसाने के लिए हमारे हृदय को भी टेढ़ा कर दिया। मीनिंग टू एकोमोडेट द क्रूकेड फेलो वी हैड टू मेक अवर हार्ट क्रूकेड टू फिट हिम वेल। अभी ये हमको छोड़ के चले गए, अभी हम बड़े परेशान हैं, क्योंकि लौटने का नाम नहीं है, कोई संदेश नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई याद होती कि नहीं पता नहीं है, और हम यहाँ तड़प रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं इनको निकाल दे हृदय से। तो हम लोग वो योग कर रहे हैं, उस योग में प्रयास कर रहे हैं कि हृदय में बसे हुए कृष्ण को हम बाहर निकालना चाहते हैं। तो उधर ही वो क्लीन बोल्ड हो गए, मतलब ज्ञान गुदड़ी हो गया उनका, क्योंकि उन्होंने वो योग सीखा था जो बाहर कृष्ण है उनको हृदय में बसाने के लिए जो होता है योग, वो सीखा था, वो उल्टा योग नहीं सीखा था उन्होंने। योग का मतलब क्या होता है, परमात्मा को हृदय में बसाना है, उनकी उनको अनुभूति करनी है, वो भी नहीं है अनुभूति, अनुभूति प्राप्त करने का योग हम लोग सीखते हैं अष्टांग योग में। लेकिन ये योग जो है ना, वो पहली बार देखा उसने कि ऐसा भी योग होता है, कि ऑलरेडी बसे हुए हैं, ऑलरेडी सिद्ध है ये सब लोग, इनके हृदय में ऐसे बसे हुए कि निकलते नहीं है, उनको निकालने के लिए योग किया जा रहा है। तो डॉक्टर का जो सोच के आया था, सारा ट्रीटमेंट का पैकेज पूरा फेल हो गया, वो भी क्या करूं, डॉक्टर कंफ्यूज हो गया पूरा। उसके बाद में आगे आगे जो भी घटनाएं हुई वो ऐसी हुई कि उद्धव जी के भ्रम में और भर पड़ती गई, और उद्धव जी पूरे से ब्लैंक हो गए, जैसे पीएचडी का गोल्ड मेडल स्टूडेंट जो है ना एग्जाम हॉल में गया, उसको कुछ नहीं याद आ रहा है, ओरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको कुछ नहीं आ रहा है, रिटन टेस्ट में भी कुछ नहीं आ रहा है, सब कुछ ब्लैंक हो गया, पूरा डिलीट हो गया ब्रेन से। ऐसा होता है कई बार, सडनली यू बिकम ब्लैंक, वैसे उद्धव जी की स्थिति हो गई। यानी कि जो भी बृहस्पति के द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान था ना, वो सब डिलीट हो गया उनका, इतना प्रभाव था गोपियों के माधुर्य का, इतना उनके प्रेम में शक्ति थी, इनका इतने प्रभाव क्षेत्र था उनके प्रेम का, उस प्रभाव क्षेत्र में जैसे ही उद्धव जी आए सारा ज्ञान उनका नष्ट हो गया, कंप्लीटली ही बिकेम लाइक अ ब्लैंक स्लेट। अभी एक बार सोचते रहे करूँ क्या, अभी करूँ क्या करूँ क्या, नंद बाबा को मिला तो कुछ और हो गया, इनको मिला, ग्वाल बालों को गैयाओं को देखा, सबको देखकर भ्रमित हो गया पूरा, वो ये कैसा प्रेम है ये, आई थिंक कि मैं मुझे ही प्रेम है भगवान के ऊपर, लेकिन अद्भुत कुछ चीज़ थी देख रहा हूँ मैं। तो वो ज्ञान गुजरी जगह है, इसलिए संत लोग यहाँ पर बार बार कहते हैं वृंदावन में कोई भी शहर का वजन लेके मत आना, रजोगुण का, रजोगुण का मतलब क्या है, धन पर गौरव, विद्या पर गौरव, सौंदर्य पर गौरव, पोजीशन पर गौरव, ये सब का गर्व लेके हम आते हैं यहाँ पर। तो वो गर्व लेके आएंगे तो अगर आप लकी होंगे तो गर्व टूट जाएगा आपका, और अनलकी होंगे तो गर्व बना रहेगा और सूखे सूखे लौट जाएंगे हम लोग। कुछ समझ में आया आपको, लकी होंगे उद्धव जैसे, तो आते ही आपका घर वो स्मैश हो जाएगा और आगे भगवान की कृपा होगी। क्लीन सेट होगा तो भगवान कुछ लिखेंगे, भरा हुआ तो भगवान क्या लिखेंगे। और अगर ज़्यादा ही गर्व है हमारा, संतों का संग भी नहीं है, तो गर्व बनाए रहेगा और हम लोग सब यहाँ का सब तुच्छ समझ के निकल जाएंगे। क्या गोपियाँ, क्या गोबर, क्या गौमूत्र, क्या ये सब गंदगी, मुझे इंटरेस्ट नहीं इसके अंदर, वो चले जाएंगे। मैंने यहाँ पर बार बार संतों के मुख से सुना है, यहाँ पर आते हो ना तो शहर के रजोगुण को छोड़ के आया करो, तब जाकर यहाँ का प्रेम का रस मिलेगा। अपना धन का गौरव, अपने पोजीशन का गौरव लेके यहाँ मत आना, मैं एक साधारण व्यक्ति बनकर आना। बिकम मिस्टर नोबडी एंड एंटर हियर, तब अद्भुत कृपा होगी यहाँ पर। सब भूल जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा पोजीशन क्या है, मेरा स्थिति क्या है, वो सब कुछ भूल कर यहाँ पर आना चाहिए। तब यहाँ के रज का महत्व पता चलता है, तब यहाँ पर ब्रजवासियों का महात्म्य पता चलता है। क्योंकि आमतौर पर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसके चेहरे पर तेज होता है, तो कोई सच्चा साधु होता है तो उसको चेहरे पे और तेज होता है। यहाँ पर जितना भजन यहाँ पर लोग करते हैं उतने वो गुरूप दिखते हैं। आप देखिए गांव में जाकर ऐसा भजन करते हैं भगवान का, लेकिन दिखने में इतने कुरूप है, कोई संत का लक्षण ही मुंह पे नहीं है। भगवान ने जानबूझ के उनको ऐसा रखा है, ना धन है, ना सौंदर्य है, ना एजुकेशन है, ना कोई पोजिशन है। जिस चीज़ पर हम सब लोगों को गर्व होता है, वो गर्व करने चीज़ें होती है, वो उनके पास भगवान ने दी नहीं है, ताकि गर्व हो ही नहीं। देयर विल बी नो ओरिजिन ऑफ गर्व ओनली, ताकि हमेशा दीन बने रहे और भगवान के गोद में रहे, राधा रानी के चरणों में रहे और प्रेम की गरिमा को अनुभव करते रहे। जब कोई उत्सव आता है ना, तब उनको गाते हुए देखे आप, आपको रोना आएगा देखकर उन जिस प्रकार से गाते हो। इतनी गहराई में भक्ति है उनके हृदय में, इतनी दानत है, इतनी सहनशीलता है, इतना प्रेम है उनके हृदय में, इतनी त्याग की भावना है। तो उद्धव जी को भगवान ने जानबूझ के भेजा था कि जब बृहस्पति की पाठशाला में पीएचडी करके आया है, अभी गोपियों की पाठशाला में भेजना चाहिए उनको, तो प्रेम का रहस्य समझेगा। तो यहाँ पर आकर प्रेम का रहस्य समझ गया वो द्वारका में, मथुरा में जो भी उसको पोजीशन, सान्निध्य भगवान का, आध्यात्मिक जीवन में जो भी प्राप्त हुआ है वो छोड़ दिया उसने। ऐसा है ये भक्ति का जीवन, जो वृंदावन में है और कहीं नहीं है। भगवान के पास भी वृंदावन के बाहर वो चीज़ नहीं है जो यहाँ वृंदावन में प्राप्त है, जो द्वारकावासियों को भी प्राप्त नहीं है जो ब्रजवासियों को प्राप्त है। द्वारकावासी भी हमेशा अचंभित रहते थे कि भाई वृंदावन लोगों के अंदर ऐसा है चीज़ क्या है, यहाँ रहकर भी भगवान दिन रात रोते रहते हैं उनकी याद करके। सब कुछ है यहाँ पर, कोई प्रेम की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वृंदावन के लोगों की याद करके बार 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 रोते रहते हैं। क्या है, क्या इसके अंदर? ऐसा है ये वृंदावन धाम। उसके ही अंदर ज्ञान गुजरी में एक राधा ब्रजमोहन का मंदिर है, वो नरोत्तम दास ठाकुर का मंदिर है, जो खितुड़ी ग्राम में उन्होंने 5 विग्रह है एक राइस के गोदाम से, जो सांप से पीड़ित थे, वो सांपों से मुक्त करा के उन्होंने वो 5 विग्रह उस गोदाम से प्रकट किए। उसमें से दो विग्रह जो है वो वृंदावन में आए। एक आपने देखा गोकुलानंद के मंदिर में, ऐसे हाथ उभर करके पीले रंग के गौरांग महाप्रभु खड़े हैं, चैतन्य महाप्रभु। दूसरा विग्रह जो राधा ब्रजमोहन, वो ज्ञान गुदड़ी में है। बहुत सुंदर मंदिर है, उसके अंदर नरोत्तम दास ठाकुर जी का हरिनाम चद्दर है, श्रीमद् भागवत है, उनकी गोवर्धन शिला है, उनकी जपमाला है। लेकिन अभी वो दिखाते नहीं किसी को, पहले हमको दिखाते थे, क्योंकि वो इतना जीर्ण हो गया, अगर उसको हाथ लगाएगा ना तो हरिनाम चद्दर की पाउडर हो जाएगी, इतना पुराना है वो हरिनाम चद्दर। तो पहले दूर से दिखाते, अभी दूर से दिखाते ने अंदर रख दिया उन्होंने उसको। लेकिन उस मंदिर में है क्या क्या है? नरोत्तम दास ठाकुर का जपमाला, हरिनाम चादर, श्रीमद् भागवत और गिरिराज शिला और उनके विग्रह राधा ब्रजमोहन तो मंदिर में सामने खड़े हैं। और हमारे संप्रदाय के प्रभुपाद के शिष्य इज होलीनेस इंद्रदुम्न स्वामी महाराज, उन्होंने अपने हृदय में संकल्प किया कि इस मंदिर का मैं उद्धार करूँगा, जीर्णोद्धार करूँगा, को पूरा बढ़िया रिनोवेट करके अभी बहुत सुंदर बना दिया, बहुत ही सुंदर। तो ये आपके आज के स्थान हैं, फिर आगे की कथा आगे करेंगे। हरे कृष्णा।